इतिहास हुए। एक प्रकार से शास्त्र में जिनको वर्णन हुए, शास्त्र के लिए प्रमाण देते हुए शास्त्र के मन जो बात आई वो कथा है कि यह कहानी है। एक कोई क्षत्रिय का लड़का था, उसके माता पिता सदा यही बात कहा करते थे बालकपन से कि यहाँ का राजा जो है बड़ा दयालु प्रेमी है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, महात्मा है, तो बड़ा दयालु है, बड़ा प्रेमी। तो हम लोग मर भी जावें तो तुम ये समझना चाहिए कि यहाँ का राजा जीवित है तो हमारे से भी बढ़ करके वो तुम्हारा हित करने वाला है। तो ये बात अपने लड़के को उपदेश दिया करते थे। लड़के के हृदय में भी ये बात जस गई कि ठीक है, माता पिता रात दिन कहते रहते हैं तो यहाँ का राजा सही है। वो गुरु के यहाँ पढ़ाता और पढ़ने को रोज जाया भी करता था। उसके माता पिता दुर्योग से एक ही साथ मर गए। यह चर्चा फैली। वो लड़का जब स्कूल के वहां आया तो दूसरे लड़कों ने और अध्यापक ने कहा कि इस बेचारे के माँ बाप एक साथ ही ऐसी की बीमारी होकर के कल मर गए। तो लड़के के चित्त पर कोई उदासी नहीं, कोई चिंता नहीं, मर गए मर गए। लड़का खूब आनंद के वहां मस्त है। तो लड़के को अध्यापक पूछता है कि भी तुम्हारे माँ बाप मर गए हो जहां, तो तुम्हारे चित्त पर कोई चिंता शोक नहीं है कोई भी प्रकार का, ये क्या बात है? चिंता शोक कौन बात को, यहाँ का जो राजा है तो बड़े दयालु है। हमारे माता पिता बराबर कहते हैं कि बेटा हम मर भी जावे तो तुम कोई बात की चिंता नहीं करना, यहाँ का राजा महात्मा है और भगत है, बड़ा दयालु है और खूब प्रेमी है, बिना ही कारण से दया प्रेम करने वाला। इस प्रकार से वे राजा साहब की समय कहा करते कि हम मर जाए तो तुमको इस बात की चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं करना। माता पिता के वचन हमारे को याद है, इसलिए हमारे को चिंता फिक्र नहीं आता। सब लड़कों को भी आश्चर्य हुआ, अध्यापकों को भी आश्चर्य हुआ। बोले कि यार का उपदेश तो सारी दुनिया ही सुनती है, इसको तो कितना असर कर गया कि बस तुम्हें मन वास्तव के मां वस्तु से थी ये बात इसमें प्रत्यक्ष करके दिख रहा है। वाह लड़का क्या है, तो बहुत ही उच्च कोटि का है। वो जो अध्यापक है राजा की अटकुशल में बैठा करता था। तो दूसरे दिन की बैठक थी, तब राजा ने पूछा कि भी कोई अनाथ बालक हो गए तो आप लोग बतवा दिया करो, ख्याल रखा करो, अपने कोई भी अपने शहर के मां अनाथ हो जावे तो उसका प्रबंध स्वीकार से किया जा करता। तो उस अध्यापक ने कहा कि अमुक लड़के का माता पिता परसों शांत हुए, दो ही दिन हुए, वो एकदम अनाथ हो गया और आपके ऊपर उसका बड़ा विश्वास है, आपके ऊपर एकदम वो निर्भर है। तो बोलो ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके लिए खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया जाए और विद्या का प्रबंध तो अपने हाई स्कूल के वहां और उसके अन्वस्त्र का प्रबंध कर दिया जावे और भी उसके घर के वहां कोई खर्च आ जावे तो राजा ने पास कर दिया कि भाई उसका खर्च सरकार सब दे ठीक है। प्रबंध हो ही गया, लड़का तो रोज आता है खूब खुश है। दूसरे लड़के पूछते हैं कि भैया तेरे तो किसके ऊपर बिल्कुल ही विचार नहीं है। बोले विचार का कोई कारण ही नहीं है, विचार कौन बात का। अरे तेरी माँ मर गई, तेरा बाप मर गया, तो हमारे माँ से हमारे बाप से बढ़ करके राजा साहब है। सो मौजूद है देखो, एक प्रकार से हमारे माता पिता का जो खर्च होगा, श्राद्ध होगा या जो कुछ खर्च होगा, सरकार से हुक्म आ गया कि सब खर्च सरकार से लिया जाए और खाने पीने का और का कपड़ों का सब का प्रबंध एक प्रकार से सरकार से हो गया। तो अच्छा वो बोला भी बात तो तू कहता वो ठीक है, क्या तुम्हारे घर पर खबर आ गई। बोले वो तो कल ही आ गई। अरे कल ही तो वहां ये पास हुआ था एक बुरा सा प्रस्ताव कल ही। हाँ बोले कल सब चीजें आ गई हमारे। बोले देखो इसको क्यों नहीं विश्वास हुआ। खूब उसको विश्वास है। एक दिन वहां ये खबर आई कि भी तुम्हारा जो मकान है वो पुलिस उसको तोड़ रही है, तुम बेटे पड़े हो जाओ तुम। उसमें बड़ा खुश हुआ। लड़के बोलते रहे तेरा मकान उसको सरकार तोड़ा रही है, तू प्रसन्न हो रहा है कि शायद कोई राज को नया बनाना होगा। उनकी दया है तो मकान पुराना हो गया, इस वास्ते सरकार नया बनाती हो। अध्यापक देख देख कर हंसता है कि देखो इस लड़को कितना विश्वास है। आज किसी दूसरे का मकान टूटता होता तो उससे वो काम छोड़कर बाधा करके ऊपर मकान तोड़ दिया। बहुत अच्छी बात, लड़कों को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो सरकार पर कितना विश्वास है। जैसे एक दिन अटकोसल के वहां बात उठी, राजा साहब ने प्रस्ताव तो पेश किया कि मैं वृद्ध हो गया तो मेरे बाद के मां युवराज पद किसको देना चाहिए। जब अब युवराज पद दिया जाएगा वो तो फिर मेरे बाद में राजा होगा ना, तो कोई आप लोगों की दृष्टि में युवावस्था वाला कोई लड़का हो तो उसको मैं अपने दत्तक पुत्र बना लूं। लोग सोचने लगे तो लोगों ने कहा कि अमुक क्षत्रिय का लड़का है, एक नाबालक है, उसकी उम्र करीब 17 साल की है, एक वर्ष के बाद इस नाबालक होने वाला है। अध्यापक बोला नहीं, कोई 2-4 महीने में नाबालक हो जाएगा, करीब 18 वर्ष का है। तो बोलो वो लड़का महाराज बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो बोलो अध्यापक से पूछो, अध्यापक से पूछा जाओ, बोलो क्या करा है उसकी। तो आप में जो श्रद्धा और जो प्रेम और विश्वास और भक्ति इतनी है कि हम लोगों की भी किसी की भी नहीं है ना, प्रेम है। तो सरकार बोला कि आपकी दृष्टि को सब बोले गुणों में पूछे मत, उसके बराबर कोई गुण ही नहीं है और कोई सुंदर नहीं है और कोई बुद्धिमान कार्यशील नहीं है, विद्या पढ़ता है तो उसको पढ़ा दिया तो एकदम उसको याद हो, बड़ी बुद्धि चीज है, बड़ा सात्विक है, शील स्वभाव है। अरे लड़का एक ही नंबर है, ऐसा लड़का तो हमारे देखने में आया ही नहीं। तो बोले सब की तुम लोगों की समझती, बोले हाँ हमारा समझती क्या, ऐसा जब आपका ये प्रस्ताव है तो ऐसा तो लड़का आपके राज में कोई है ही, तो उसको सब सब समझती से पास हो गया कि वो युवराज पद के ऊपर स्थापित किया जाए, उसको युवराज पद कागज कलम से समझो कि आपने पास कर दिया, और उसको पता ही नहीं। दूसरे दिन उसके घर के ऊपर जो नया घर बनाया गया, राजा ने बढ़ा दिया, बड़े बड़े अफसर उनके घर के ऊपर उसको पहुंची और उसने बड़ा सत्कार किया कि महाराज आइए, आप सब यहाँ पधारे तो मुझको ही बुला लेते, इतना परिश्रम क्यों किया। बोले महाराज साहब की तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी दया है। बोले आपका कहना ये तो ठीक है, ये तो हमारे माता पिता बराबर कहते थे, और मैं भी इस बात को जानता हूँ कि महाराज की मेरे ऊपर बड़ी दया है, बड़ा प्रेम है। बोले नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम जो जानते हो उससे भी बहुत ज्यादा महाराज साहब की तुम्हारे ऊपर दया प्रेम है, जिसका तुम अनुमान भी नहीं कर। तो क्या महाराज साहब ने कोई एक दो गांव का पट्टा मेरे लिए लिख दिया क्या? अरे बोले पट्टा क्या, बहुत भारी तुम्हारे गुरु महाराज साहब की दया है, तो कहीं का मुझको जागीरदार बना दिया। अरे बोले जागीरदार क्या, तुम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते, इतने महाराज साहब की सुनाया। ठीक है, आप लोगों की दया है, क्योंकि जिस पर भगवान की दया होती है उसके ऊपर सबकी दया होती है, तो महाराज की दया है तो आप सब हमें की हाकम लोग हैं, तो उनकी दया तो आप लोगों की मेरे पर दया है। बोलो हम तो आपके पास आए हैं आपकी दया चाहते, हम तो आपकी दया के पास हैं। आप क्या कहते हो कि एक बार प्रकार से हमारी दया, हमारी क्या दया, हम तो एक प्रकार से थी आपकी दया के पात्र है। उसका बोला कि महाराज ऐसी बात नहीं करी थी मुझ बालक के लिए, मैं तो सब आप लोगों का बालक हूँ। बोले एक प्रकार से आप पर जो महाराज साहब की दया है ना, हाँ वो तो है महाराज साहब की दया है, आप लोगों की भी दया है, किंतु ये इतनी बड़ी बात नहीं करी थी कि मुझको भी दया रखनी चाहिए, मैं दया रखने वाला कौन हूँ। तो आप लोगों को मालूम हो तो बताओ कि महाराज साहब की मेरे पर कैसी दया है। अरे बोले हम क्या बतलाओ, वो बतलाने की बात हो तो बतलाओ कि एक प्रकार से बड़ी भारी दया है। बोले ये तो मैं ही जानता हूँ। बोले तुम नहीं जानते, जितनी महाराज साहब की दया उसको तुम कभी अनुमान भी नहीं कर सकते, जानते भी नहीं। तो फिर आप बतलाओ, महाराज साहब ने आपको युवराज पद दी, आपका लड़का बना दिया, और एक प्रकार से आप युवराज हो गए। बोले है ऐसी बात, बोले मुझको, मैं तो कल लायक ही नहीं हूँ मुझको, ऐसा ये बात एक प्रकार से सच्ची बात, सत्य क्या एकदम छोड़ा ना मान, ऐसी बात है। बट इसीलिए हम कहते थे कि आप उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। बोले ये तो मेरे को कभी सपना भी अनुमान नहीं होता था। यही था कि हम महाराज की दया जैसे माता पिता की दया ऐसे महाराज की दया उससे हूँ। इसलिए हम कहते थे कि आप अनुमान भी नहीं कर सकते इतनी दया। फिर वो युवराज बन गया, इस प्रकार से पद मिल गया उसको। अब उसके ये बात समझ भाई ठीक है, ये तुम्हारी सब कोई जो दया चाहते हैं इनका करा भी इस अंश में ठीक ही है। यह है दृष्टांत रूपक, इसको बताना है ज्ञान में, समझाना है भगवान की दया सुनिधा। तो यहां जो राजा के नाम से कह गया, राजा तो यहां भगवान, और जो जितने अवसर बतलाए गए वे सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। जैसे पांच प्रकार से थी महापुरुषों का वर्णन किया गया, बाल विद्या के 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक। एक तो ये लक्षण की अद्वेष्टाश्र भूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्संयोगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयूर्पित मनोबुद्धि व्योम भक्त समय। ये दो श्लोकों करके जिनके लक्षण बतलाए गए अर्थ भी बतलाया गया। दूसरा ये लक्षण बताया कि अद्वेष्टाश्र भूतानां मैत्र करुण एव च, ये दूसरा ये यस्मानुद्दिष्टे लोको लोकानुद्दिष्टे च हर्षामर्ष भयोद्वेगी मुक्तो यह सतमे परिय। जो सारे भूतों के मध्य से बताया द्वेष भाव से रही, तो अब यहाँ बताया गया यस्मानुद्दिष्टे जिससे किसी को भी उद्वेग नहीं होता, और वहां का अद्वेष्टाश्र भूताना किसी के साथ में जिसका द्वेष थी, और यहां बतलाया जाता है जिससे किसी को उद्वेग नहीं होता। तो बात एक ही है, उद्वेग उसी से होगा कि जो द्वेष रखेगा। इसमानोदृष्टि लोक और लोकानोदृष्टि से, और जिसको भी दूसरों से भी जिसको उद्वेग नहीं होता, क्योंकि जो क्षमाशील होगा तो उसको उद्वेग होने कोई कारण नहीं थी। और बताया गया कि जिसमें विकारों का अभाव है, हर्ष ईर्षा भय उद्वेग इनसे जो रहित है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यार है। तो एक यह श्रेणी बताया, पहला दो श्लोकों में एक श्रेणी, फिर एक श्लोक में एक श्रेणी, फिर आगे एक श्लोक में एक श्री अनपेक्ष प्रतिरक्ष उदासीनो गदवत है सर्वारम परित्यागी योमद भक्त है समय प्रिय। इस प्रकार का जो मेरा भक्त है उसको प्यारा, कैसा अनपेक्ष है, जिसके हृदय में कोई प्रकार की इच्छा नहीं है, इच्छा कामना वासना ये बिल्कुल जिसके हृदय में नहीं है, सूची जो शुद्ध है बाहर भीतर से, सुचाचार सदाचार से बाहर की पवित्रता जिसकी हो चुकी, और अंतकरण के वहां दुर्गुण दुराचारों का अभाव होकर अंतकरण जिनका शुद्ध हो गया निर्मल हो गया, ऐसा सूची पवित्र दक्ष मन वही दक्ष है कि जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिले उसको प्राप्त कर लेना, तो जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली ऐसा चतुर, और कदम था जिसके वहां व्यथा हो ही नहीं सके, जिसे कहा कि दूसरों से जिसको व्यथा नहीं होती वो कह रहे जिसको व्यथा हो ही नहीं सके, अरे जो उदासीन है पक्षपात से नहीं, चाहे बाप भी हो तो उसकी वो पक्ष नहीं करता, ऐसा न्यायकारी। और शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है। अशुभ तो पाप कर्म तो करता ही नहीं और शुभ कर्मों के फल का त्यागी है, पाप तो करता ही नहीं और अशुभ कर्म का तो स्वरूप से ही त्याग है, पाप कर्म के फल का त्याग है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तीसरी श्रेणी, चौथी श्रेणी के यो न रिष्टति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति अशुभासु प्रीत्यागी भक्तिमान ये सब ये प्रिय है। तो पहला सर्वाहम प्रीत्यागी भक्तिमान ये सब प्रिय मन सभी आर्मों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, मन कर्मों के वहां कर्ता पड़े के अभिमान का जिसने त्याग कर दिया है, और दूसरा जो शुभाशुभ का प्रत्यागी है जो निर्षति प्रिय वस्तु को पाकर के तो हर्षित नहीं होता है, अप्रिय को पाकर के उसमें द्वेष नहीं करता है और प्रिय वस्तु के नाश होने पर चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता है और प्रिय वस्तु के अभाव के वहां आकांक्षा नहीं करता है, और समझो कि शुभाशुभ जो कर्म है जिनका जिन्होंने त्याग कर दिया है ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। पांचवी श्रेणी का कहते हैं समस्त शत्रु से मित्रित तथा मानापमान हो शीतोष्ण सुख दुखी सुख समय संग विवर्जित है तुम निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्ट हो इनके अनुचित अनिकेत श्रीमती भक्तिमान ये समय प्रिय ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। कैसा समस्त शत्रु से मित्र शत्रु और मित्र में जिनका समभाव है तथा मानापमान मान और अपमान में जिनका समभाव है शीतोष्ण सुख दुखी सुख समस्त विवर्जित है शीतोष्ण और सुख दुखी प्राप्ति में जो सम है और आसक्ति से जो रही थे और तुम निंदा स्तुति नमोनी निंदा स्तुति में भी जो समय और भगवान का हर वक्त मनन करने वाला है ऐसा जिनका स्वभाव है संतुष्ट हो एन के चीज जो कुछ आकर के प्राप्त होता है उसको भगवान का विधान समझ करके उसमें हर वक्त प्रसन्नचित रहता है संतुष्ट है सततन ऐसा भगत भगत योगी हर भक्त आनंद के मां मग्न रहता है। तुलिंदा स्तुति मुनि संतुष्ट हो एन केंचित जो कि स्वागत मिल जाए उसमें संतुष्ट अनिकेत श्रीमती भक्तिमान प्रिय है अनिकेत निकेत मां घर का है घर के मां अभिमान से रही देखा नाम भी घर है इसमें भी अभिमान से रही अस्थिर जो की बुद्धि है भारी से भारी आपत्ति आवे तो बल्कि बुद्धि विचलित नहीं हो न कोई लोभ से काम से भय से वो अपने धर्म का त्याग करे कभी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती ऐसा भक्तिमान पुरुष उसको प्यारा है। तो ये पांच श्रेणी वाले जो भगत हैं सभी भगवत प्राप्त पुरुष है सभी उस कोटि के महापुरुष हैं। ये जो आए राजा के समझो की मंत्री लोग या हकम लोग या अधिकारी लोग वे हैं पांच आदमी उसके पास में जो मिलने के लिए आए और वो भक्त जो है जिसके पास आए जिस पर भगवान की दया है वो भगवान को अतिशय प्यारा है वे तो सब प्यारे हैं क्योंकि राज के काम करने वाले राज के मां दाखिल हैं प्यारे हैं और वो अतिशय प्यारा है वो अतिशय प्यारा है सिद्ध पुरुष महात्मा पुरुष नहीं है साधक है तो साधक और ज्यादा प्यारा भगवान कि ये तो समझो राजा को अच्छी तरह समझ करके राजा के बीच के मां प्रेम कर रहे हैं भगवान को समझ कर भगवान में प्रेम कर रहे हैं और वो तो एक पर सुना सुनाया श्रद्धा करके प्रेम कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्यारा है, तो वो साधक है। और उनके जो माता पिता उसको उपदेश दिया करते थे, वे भी एक प्रकार से राजा या भगवान, भगवान के तत्व रहस्य को जानने वाले महापुरुष थे। वे भी जो अपने लड़के को शिक्षा दिया करते थे, वे योगी थे उसके माता पिता। और वो लड़का योग भ्रष्ट था, जिसको इस प्रकार से माता पिता उपदेश देते थे। योग भ्रष्ट होने से बालक से उनके स्वभाव से ये बात ही कि भी राजा ऐसा है, माने भगवान ऐसे हैं, भगवान पर उनका पूरा विश्वास श्रद्धा थी। और जहां वो पढ़ता था उस दिन की माँ भी यही बात थी, वो भी महात्मा पुरुष था, जहाँ विद्या शिक्षा करता था, वो भी देख करके उसको आशीष होता था कि भी लड़का तो ये एक ही ऐसा है। तो ये जो उदाहरण दिया गया, तो उस लड़के के भीतर के बीच के माँ जो विश्वास है राजा पर यानी भगवान पर, और उस विश्वास को लेकर के उस हृदय में ये छाप है कि महाराज की मेरे पर बड़ी दया है और बिना कारण मुझसे प्रेम करने वाले हैं, तो ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य जो है कि वो मुझको एक प्रकार से थी युवराज पद मिल गया। जैसे कोई आकर के कि कोई शब्द को आकर के है कि भगवान तुम्हारे को दर्शन देने मिलेंगे, अपने परम धाम में अपना मित्र बनाकर तुम्हारे को रखेंगे, तो ये सुनकर मनुष्य को कितना हर्ष होता है। तो इसका वो ही पात्र होता है कि जो भगवान की अपने पर परम दया समझता है, परम प्रेम समझता है कि भगवान हेतु रहित दया और हेतु रहित प्रेम करने वाले। तो हम लोग जो समझते हैं कि भगवान की हम लोगों पर दया है, प्रेम है, तो हम लोगों की समझ वहां पूछती नहीं। इतनी भगवान की हम लोगों पर दया और प्रेम है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। जैसे वो क्षति का लड़का अनुमान भी नहीं कर सका, इसी प्रकार से थी हम लोगों को अपने ऊपर भगवान की अपार दया और अपार प्रेम समझना चाहिए। और हम समझ जाएंगे तो समझने से थी हमारे को बड़ा भारी आनंद और शांति मिलेगी। जैसे उस क्षत्रिय के लड़के को समझने से आनंद मिला कि वो इतनी भारी राजा की दया है कि तुमको युवराज पद दे दिया, या ना हमारे पर भगवान की इतनी दया है कि भगवान हमारे लिए एक प्रकार से साक्षात मुलाकात करना पास कर लिया, मिलना दर्शन देना पास कर लिया, ये हमारे को माल हो तो कितनी हम भगवान की दया सो। नारायण नारायण नारायण।